रसिक श्रोताओं, अभी तक आपने सुरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश आदित्य, नूतन कपूर और अशोक चक्रधर की रचनाएं सुनी और आइए अब सुने एक और हिंदी हास्य व्यंग के जाने माने कवि भाई शैल चतुर्वेदी से उनकी कुछ सशक्त रचनाएं।
शैल चतुर्वेदी के बारे में केवल इतना कह दूं, आजकल बंबई रहने लगे हैं, किसी जमाने में आगरा में थे। आगरा की तीन चीजें उस समय मशहूर थी, एक आगरा का पेठा, एक आगरा का ताजमहल, एक आगरा का पागलखाना। लेकिन उस समय अगर आगरा का नाम किसी व्यक्ति ने रोशन किया अपनी कविताओं से तो वे थे शैल चतुर्वेदी, उस समय आगरा के थे। अब बंबई आ गए हैं, बंबई फिल्मों में भी, अनेक फिल्मों में रोल कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आजकल ये बंबई को ही अपना क्षेत्र मानकर बंबई बस गए हैं, लेकिन फिर भी पूरे देश के कवि सम्मेलनों में बड़ी शान से बुलाए जाते हैं, स्नेह आमंत्रण भिजवाए गए हैं, बड़ी शान से ये बुलाए गए हैं।
हमने एक नई कविता बनाई और अपनी श्रीमती को सुनाई, वो बोली अब तुम्हारी कविता विद्याचरण शुक्ल की तरह फालतू हो गई है। अब तुम्हारी कविता विद्याचरण शुक्ल की तरह फालतू हो गई है और आजकल के मुख्यमंत्रियों की तरह फालतू हो गई है हमने कहा किसी भी मुख्यमंत्री की बात कह दो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात मत कहना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात मत कहना, वो बिल्कुल मर्द है। उसके सीने में शिवाजी के लिए सम्मान और विधवाओं के लिए दर्द है, उसके सीने में शिवाजी के लिए सम्मान और विधवाओं के लिए दर्द है। किसी भी मर्द के खिलाफ लिखना हमारा संस्कार नहीं है। देवी तुम्हारा पति शैल चतुर्वेदी है, कोई शरद पवार नहीं है। तुम्हारा पति शैल चतुर्वेदी है, कोई शरद पवार, कोई शरद पवार नहीं है। चार पंक्तियां और पढ़ रहा हूँ। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार हम चलाएंगे, ड्राइवर बोला हम उतर जाएंगे। हुजूर चलाकर तो देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। ये कार है, सरकार नहीं है जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। ये कार है, सरकार नहीं है जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। और अंत में कविता जिसका शीर्षक बड़ा गड़बड़ है, शीर्षक है बलात्कार। सुनिएगा, ये 28 साल में जनता पार्टी के अवसान के बाद ये शब्द बड़ा लोकप्रिय हुआ। सवेरे सवेरे पेपर उठाएंगे, प्रथम पृष्ठ पर समाचार पत्र की आपको ये शब्द मिल जाएगा और इसको सब बाप बेटे, माँ बहन सब पढ़ते हैं साथ में। एक साथ समझ में नहीं आता है क्या चीज़ है। मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपांड किया है, थोड़ा सा बढ़ाया है शब्द को। इसका एक ही अर्थ आप लोग लेते हैं, हम लोग लेते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन मैंने इसका थोड़ा सा और भी विकास किया है। देखिएगा, कथा शुरू कर रहा हूँ। हमने मित्र से कहा यार कुछ भी कह लो, कार में कार आई सरकार। वो बोले गलत, कार में कार बलात्कार। कार फिएट हो या एम्बेसडर केवल सड़क पर चलती है, मगर बलात्कार वो कार है जो सड़क हो या संसद कहीं भी चल सकती है। जब कोई नर्स डॉक्टर के पीछे और डॉक्टर नर्स के पीछे हो और रोगी बेचारा खाट के नीचे हो, तो कहना सुनना सब बेकार है और भाई साहब ये मेडिकल बलात्कार है। जब कोई संगीतकार देशी गीत को विदेशी धुन से सजाए और बात बन जाए, तब कुर्बानी भी व्यापार है और भाई साहब ये म्यूजिकल बलात्कार है। मुरारजी भाई बोले निर्भय हो जाओ और राजनारायण निर्भय हो गए। चरण सिंह की टांग पकड़कर आराम से सो गए। इसे दड़ियल बलात्कार कहते हैं। सुरेश और सुषमा के बीच में न जाने कहां से जगजीवन राम आ गए। और बेटे के बलात्कार में बाबूजी काम आ गए। इसे सड़ियल बलात्कार कहते हैं। मुरारजी भाई सजग हो गए और अपना गिलास थाम कर पार्टी से अलग हो गए। मुरारजी भाई सजग हो गए अपना गिलास थाम कर पार्टी से अलग हो गए इसे यूरेनियल बना क्या कहते हैं। मुरारजी भाई सजग हो गए, मुरारजी भाई सजग हो गए, अपना गिलास थाम कर पार्टी से अलग हो गए। इसे यूरेनियल बलात्कार कहते हैं। हमने कहा कुछ भी कह लो, बलात्कार इज अ सीरियस क्राइम। हमने कहा कुछ भी कह लो, बलात्कार इज अ सीरियस क्राइम। वो बोले जब लोग बाग हिंदुस्तान में रहकर अंग्रेजी में बात करते हैं तो इसे भाषा के साथ बलात्कार कहते हैं, तो इसे भाषा के साथ बलात्कार कहते हैं। हमने कहा माफ कीजिए, जुबान फिसल गई, हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी निकल गई। वो बोले ऐसे ही कुछ भी निकल जाता है। इस जमाने का आदमी एक मिनट में पैंट से बाहर हो जाता है, इस जमाने का आदमी एक मिनट में पैंट से बाहर हो जाता है। और समाजवाद वो आईना है जिसमें चोर और सिपाही एक सरीका नजर आता है, समाजवाद वो आईना है जिसमें चोर और सिपाही एक सरीका नजर आता है। हमने कहा समाजवाद क्या है हमें मालूम है। बोले नहीं, हमारे देश का समाजवाद एक बाथरूम है जिसमें नहाने वाला हर पानी नंगा है। हमारे देश में कोई पाप पाप नहीं है क्योंकि हमारे देश में गंगा है, हमारे देश में कोई पाप पाप नहीं है क्योंकि हमारे देश में गंगा है जो केवल पाप धोने के लिए बहती है, जो केवल पाप धोने के लिए बहती है। और पापियों की एक बड़ी संख्या जिसके भरोसे रहती है, पापियों की एक बड़ी संख्या जिसके भरोसे रहती है। हमने कहा बात को जरा साफ करो। वो बोले ना भैया जी माफ करो, बात को साफ करने वाले साफ हो गए, सारे काम चुपचाप हो गए। बहुगुणा जी गुणा करते करते भाग हो गए, बहुगुणा जी गुणा करते करते भाग हो गए, साड़ी के चक्कर में कुर्ते पर दाग हो गए। चरण सिंह ने चुनाव चिन्ह औरत रखा और बुढ़ापे में औरत को छेड़ने का मजा चखा। चरण सिंह ने चुनाव चिन्ह औरत रखा और बुढ़ापे में औरत को छेड़ने का मजा चखा। हमने पूछा ये कौन सा बलात्कार है, हमने पूछा ये कौन सा बलात्कार है, तो मुस्कुरा कर बोले कि आइडियल बलात्कार है। मुस्कुरा कर बोले कि
मैं बिल्कुल जो आप चाहते हैं वही होगा। ये बैठे नहीं है, मैं केवल यही कहना चाहता हूँ आपकी बात ही भाई शैल जी से कि वो एक रचना आपकी इच्छा भावना कामना पर जरूर सुनाएंगे, लेकिन मैं शैल जी के लिए केवल एक शब्द कह सकता हूँ कि जो पूजा जाए पत्थर देवता मालूम होता है, ये गंजा तो बड़ा पहुंचा हुआ मालूम होता है।
मैं गंजा हूं, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझ जैसे और लोग भी मंच पर और चिंता में बैठे हुए हैं। नेहरू जी भी गंजे थे और महात्मा गांधी तो अपने आप हो गए थे, तो उस परिपाटी में हम लोग भी चले आ रहे हैं। तो सुनिएगा, यदि सिर पर बाल रहे तो मुश्किल यह है कि अगर चांद खुली न हो तो सरस्वती कैसे प्रवेश कर सकते हैं। खैर, आदरणीय मनोज जी के चरणों में प्रणाम भेजते हुए, इन्होंने मुझे गंजा कहा, कोई बात नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मेरे गुरु हैं, मैं अपनी बात अपने आप कह रहा हूँ, सबके सुनेगा। छोटी सी कविता है, उसके बाद एक लंबी कथा सुना दूंगा, सुनिए। लोग बाग हमारे शारीरिक विकास यानी बॉडी डेवलपमेंट, लोग बाग हमारे शारीरिक विकास और हमारे गंजेपन को देखकर हमारा मजाक उड़ाते हैं, मगर उन्हें क्या मालूम कि जवानी में हम भी खूबसूरती में कमाल थे, जवानी में हम भी खूबसूरती में कमाल थे, हमारे सिर पर भी लहराते हुए चमकीले बाल थे, कॉलेज की लड़कियां कॉपी पर हमारा चित्र बनाती थी। कॉलेज की लड़कियां कॉपी पर हमारा चित्र बनाती थी, हमें देखकर शर्माती थी, और दो चार तो ऐसी थी जो हमें देवानंद कह के बुलाती थी, दो चार तो ऐसी थी जो हमें देवानंद कह के बुलाती थी, मगर भला हो इस दृष्टि के चक्कर का जिसने हमें बर्बाद कर दिया और देवानंद से प्रेमनाथ कर दिया। भला हो इस दृष्टि के चक्कर का, भला हो इस दृष्टि के चक्कर का जिसने हमें बर्बाद कर दिया और देवानंद से प्रेमनाथ कर दिया। रिक्शे वाला कहता है वो तो मैंने अंधेरे में हाँ कह दी। रिक्शे वाला कहता है वो तो मैंने अंधेरे में हाँ कह दी, उजाले में होता तो ठेले की सवारी रिक्शे में नहीं ढोता, उजाले में होता तो ठेले की सवारी रिक्शे में नहीं ढोता। आदरणीय मनोहर जी का हमारे बारे में यह तर्क है कि हम केवल कलर से मार खा गए, वरना जगदी वरनाम में और हमें क्या फर्क है। हम केवल कलर से मार खा गए वरना जगजीवन राम में और हमें जगजीवन राम में क्या फर्क है। और एक कविता छोटी सी आपके सामने और पशु करता हूँ, सुनिए।
क्या बात है,
सुनेगा? नहीं सुना दूंगा बाद में, बिल्कुल सुनाऊंगा
बाद में।
मैं अक्सर आदरणीय माणिक वर्मा के घर ठहरता हूँ जाकर के इनके हरदा में, तो मुझे एक दिन इनके एक अलमारी में एक पोटली मिली, पोटली देखा है टटोल करके तो उसमें कुछ चुरमुराया पदार्थ था, कुछ बाहर हरा पदार्थ पीछे गिर पड़ा। मैं क्या है भैया? तो बोले गांजा है। मैंने गांजा क्या होता है? तो बोले लोग पीते हैं। मैं कहा आप भी पीते हो क्या? बोले मैं पीता नहीं हूँ, इसको रखता हूँ सिर्फ इसलिए कि हमारा दर्शनीय पदार्थ है, अनुकरणीय नहीं है, दर्शनीय है। और ये विदेश से लोग आते हैं, चिलम में भरते हैं और चिलम में फूंक लगाते हैं, आध्यात्म का अध्ययन करते हैं। मैंने अच्छा भैया, मैंने बिना अध्ययन बिना पिए हुए अध्ययन जो किया आप जाने प्रस्तुत सुनेगा। हमारे एक दोस्त हैं सूरत शक्ल में जले हुए टोस्ट हैं, एक दिन गांजे का दम लगाकर बोले हेल्थ इज वेल्थ,
हेल्थ इज वेल्थ।
एक दिन गांजे का दम लगाकर बोले हेल्थ इज वेल्थ। हमने कहा हेल्थ तो हमारे पास भी है पर वेल्थ कहाँ है? वो बोले तुम्हारी हेल्थ भी कोई हेल्थ है? जानते हो बड़े बड़े डॉक्टर क्या कहते हैं? सिर के बाल कमजोरी से झड़ते हैं, तुम्हारा सिर भी मैदान हो रहा है, शरीर फूटकर तूफान हो रहा है। तूफान को शांत होते क्या देर लगती है? तूफान को शांत होते क्या देर लगती है? फिर मुस्कुराकर बोले हेल्थ तो हमारी है, जानते हो कैसे संवारी है? जहां एक गांजे की दम मारी और एक किलो रबड़ी अपने पेट में उतारी, आत्मा ब्रह्मांड में घुस जाती है, आत्मा आत्मा ब्रह्मांड में घुस जाती है और सारी दुनिया समाजवादी नजर आती है, सारी दुनिया समाजवादी नजर आती है। एक मित्र और हैं, वैसे तो साहित्यिक चोर हैं, एक मित्र और हैं वैसे तो कविता के चोर हैं, मगर गांजे का दम लगाते ही यहाँ तक ओरिजिनल हो जाते हैं कि मना जी को अपना शिष्य और आदि जी को बच्चा बतलाते हैं। गांजे का दम लगाते ही यहाँ तक ओरिजिनल हो जाते हैं कि मना जी को अपना शिष्य और आदि जी को बच्चा बतलाते हैं। एक दिन गांजे का दम लगाकर कवि सम्मेलन के मंच पर चढ़ गए, लाख मना करने पर भी कविता पढ़ने के लिए अड़ गए, और जब पढ़वाया तो किसी दूसरे की कविता पढ़ गए, जिसकी पढ़ रहे थे वो भी मंच पर था, उसने टोका तो बोले सिद्ध करो कि तुम्हारी है, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारी है, सिद्ध करो कि तुम्हारी है। सब कवियों ने अपना मुंह सी लिया और उन्होंने सारा कवि सम्मेलन चिलम में घुसेड़ के पी लिया, एक बार एक ट्रेन यात्रा में हमारी एक नेताजी से हो गई यारी, बस यूं समझिए किस्मत फूट गई हमारी। बात की बात में सिगरेट मुंह में लगाकर एक हमें पकड़ाकर नेताजी बोले लीजिए आप भी पीजिए। जैसे हमने सिगरेट मुंह से लगाई एक जोर का ठसका लगा और फिर खांसी आई। हमने पूछा क्या है भाई? वो बोले कुछ नहीं, गांजा है, वो गांजा जिससे कंसंट्रेशन होता है, प्रेरणा का स्फुरण होता है। हमने इसी के बल पर चुनाव जीता है। हमने कहा हम तो पीते नहीं, आपने पिला दिया, परेशान है हम, हमारे कपाल में कोई लटक रहा है। वो बोले गांजे का धुआं है ना, बाहर निकलने के लिए भटक रहा है, हमने कहा तबीयत घबरा रही है। बोले दिल्ली वाली अंगूठा दिखा रही है। हमने कहा यमदूत नजर आ रहे हैं। बोले राजनारायण मुस्कुरा रहे हैं, हमने कहा दिमाग उड़ रहा है। बोले बस वही ब्रह्मांड है, हमने कहा खाया पिया सब बाहर निकल रहा है। बोले यही मारुति कांड है। हमने कहा अंतिम दो पंक्तियां जिनकी रचना लिखी है सुनिएगा। हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। बोले हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो बोले बेटा यही तो रामराज है। हमने कहा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता।
वाह 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 वाह।
अभी आपने भाई शैल चतुर्वेदी से उनकी कुछ बुलंद रचनाएं सुनी, और शैल जी के बाद इस मंच पर आने वाले कवि हैं भाई नरेंद्र मिश्र।
इस कवि सम्मेलन में राजस्थान की पावन धरती चित्तौड़गढ़ से एक बहुत ही वीर रस के श्रेष्ठ कवि को आमंत्रित किया गया है। कविवर नरेंद्र मिश्र चित्तौड़गढ़ में रहते हैं और राजस्थान की अनेक घटनाओं का इन्होंने अपनी कविताओं में चित्रण किया है बड़ी खूबसूरती के साथ। मैं भाई नरेंद्र मिश्र से प्रार्थना करूंगा और आपसे भी ये कहूंगा कि मुश्किलें यो तो बहुत इंसान के आगे, सब कुछ गवारा है मैं ईमान के आगे। अरे रोशनी बदनाम हो जाए न इस डर से, रख दिया हमने दिया तूफान के आगे। आ रहे हैं कविवर नरेंद्र मिश्र और उनका ये कहना है कि तूफान का रुख हम उठ के बदल दें तो बात है, शोलों को लेके हाथ मसल दें तो बात है। सुना रहे हैं नरेंद्र विश।
कविता शुरू करता हूं। इसका मीटर है इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी।
वाह वाह वाह।
इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी। जब मुल्ला मौलवी फरकाते हैं तो वो क्या कहता है? भाषा पर आपका ध्यान चाहूंगा। इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी, लेकर शांत कृपाण कर में तब शाह हुमायूं गरज उठा, जिसके भीषण दुर्जय रब से वसुधा का साहस लर्ज उठा। बोला, तुम क्यों बहकाते हो, ले ले मजहब का नाम मुझे, और गुमराह कर रहे हो आखिर प्यारा अहले इस्लाम मुझे। जो दुश्मन नेक दिली का है वह दुश्मन है इंसानों का, वह काफिर है नंगा करता दामन पाकीज़ा बहनों का, कि कच्चे धागे की एवज में जर्रा जर्रा नहला दूंगा, जो मजहब का कौमी दुश्मन उसको दोजख पहुंचा दूंगा। कि हमला होगा पढ़ चलो अभी इस्लामी खून वफा कर दो, हमला होगा पढ़ चलो अभी इस्लामी खून वफा कर दो, और रख लो सब प्राण हथेली पर तारीखों में जौहर भर दो। फिर क्या था भीषण रण करने, सज गया कटक बेगानों का, और राखी की लाज बचाने को तलबड़ता मुगल पठानों का, उस शेर बबर बाबर सुत की तलवार मचलती जाती थी, इतिहास बदलता जाता था तारीख बदलती जाती थी। दोस्तों अब एक चरण शायद आपको मेरी मिट्टी की गंध आए इस चरण में, उस तरफ बहादुर शाह बढ़ रहा हुमायूं, उधर इधर शौनक की निर्मम प्यास बढ़ी, आपका ध्यान चाहूंगा मित्रों, बढ़ रहा हुमायूं उधर इधर शौनक की निर्मम प्यास बढ़ी, और प्रलयंकर शंकर के स्वर में भीषण चंडी मचल पड़ी, कि उस तरफ बहादुर शाह इधर मतवाले राजपूत लड़ते, और थे प्राण हथेली पर जिनके सर बांधे कफन बढ़े चलते, कि सब आग उगलती थी तोपे फिर भी बढ़ने की चाह रही, और गोली वर्षा सी बरस रही प्राणों की कब परवाह रही, कि राजस्थानी योद्धा रण में विकराल काल से लगते थे, और थे स्वतंत्रता के दीवाने हरिदल का कंठ कतरते थे, पर चिनगारी चिनगारी है सारा जग नहीं जला सकती, आपका ध्यान चाहूंगा मित्रों, पर चिनगारी चिनगारी है सारा जग नहीं जला सकती, और मानी दिनकर की एक किरण सारा दम नहीं हटा सकती, कि आखिर केसरिया झंडे की तिल तिल भर ताकत जूझ गई, और भगवान बुद्ध की यह धरती उस दिन शौनक में डूब गई, कि तब तक न हुमायूं आ पाया, तब तक न हुमायूं आ पाया, महलों की हिम्मत टूट गई, और भाई के आने की आशा रानी के मन से छूट गई, कि चित्तौड़ दुर्ग में जौहर की तब चाह मचलती जाती थी, इतिहास बदलता जाता था तारीख बदलती जाती थी। कुछ पंक्तियां मित्रों मैंने जौहर पे लिखी, आपने हिंदी के श्रेष्ठतम कवियों से जौहर पर लिखी कविताएं पढ़ी होंगी सुनी होंगी, मुझ जैसे छोटे कवि से 8 पंक्तियां सुन लें आप, कि वृद्धा माताएं एक तरफ मुझे इसके कहने में फक्र है कि चित्तौड़गढ़ का जौहर न केवल भारतवर्ष में पर दुनिया में भी उसकी कोई मिसाल नहीं है, वृद्धा माताएं एक तरफ बहने जलती दूसरी तरफ, और तूफानी जोश भरा जिनमें जलती बालाएं एक तरफ, कुछ की बरात दरवाजे पर आई हुई थी, खासतौर से 4 पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा, कि कुछ थी साजन घर जाने को, कुछ थी साधन घर जाने को, अंतर में भामर का स्वर था, और डोली फूलों से सजी हुई पैरों में लगा महावर था, कुछ मेहंदी हाथ रचाए थी मुख पर झिलमिल अवगुंठन था, और हल्दी से चूनर पी ली थी कर में परिणय का कंकर था, पर भस्म हो गई हसंस कर चित्तौड़ दुर्ग की महिलाएं, पर भस्म हो गई हसंस कर चित्तौड़ दुर्ग की महिलाएं, के इतिहास कीर्ति दोहराएगा जौहर साहस की प्रतिमाएं, कि चढ़ गई चिता पर कर्मवती भाई को पता न लग पाया, बस 1.5 कोस का अंतर था तब तक न हुमायूं कि हो गया बहादुर शाह मगन दुंदुवी जीत की बजवाई, हो गया बहादुर शाह मगन दुंदुवी जीत की बजवाई, उसकी विजय हो गई सब लोग मारे गए छत्रानी ने जौहर कर दिया, हो गया बहादुर शाह मगन दुंदुवी जीत की बजवाई, तब ही अल्लाह हो अकबर की ध्वनि एक बार फिर से आई, ध्यान चाहूंगा आपका, तब ही अल्लाह हो अकबर की ध्वनि एक बार फिर से आई, कि मुगलों ने तलवारें खींची बाबर का बेटा आ पहुंचा, और हिंदू रानी का मुसलमान भाई आकर आई, कि मजहब की कौमी कट्टरता उस रोज पिघलती जाती थी, मजहब की कौमी कट्टरता उस रोज पिघलती जाती थी, इतिहास बदलता जाता था तारीख बदलती जाती थी। हमला करने से पहले एक बात कहता है हुमायूं, वो क्या बात कहता है वो देखें, कि सारे लश्कर को रोक हुमायूं एक बार बोला फिर से, मेरे बहादुरों मजहब की लिख दो तारीख नए सिर से, यह बहादुरों की धरती है हिम्मत तूफानी कर लो, ओहे फर्ज तुम्हारे कंधे पर भाई का पानी रख लो, कि पीछे न कदम रखना शेरो है आज आजमाई सबकी, और ले लो तलवार पढ़ो आगे अल्लाह मदद को है सबकी, फिर क्या था पल की देर न की लश्कर दुश्मन पर टूट पड़ा, मानो ज्वालाएं गर्भ लिए पर्वत से दरिया फूट पड़ा, कि दुश्मन तब तक संभला ही था, मुगलों ने घेर लिया आकर और शस्त्रों के अगणित वार हुए अभिमानी अरिदल के सर पर कि मानवता के बल के आगे दानव की क्या चल सकती है, मानवता के बल के आगे दानव की क्या चल सकती थी, और जब दुष्ट बहादुर शाह भगा सेना कैसे रुक सकती थी कि जालिम के मंसूबों की अब तकदीर बदलती जाती थी, इतिहास बदलता जाता था, तारीख
बदलती।
ऐतिहासिक संदर्भों के आवरण में सजी ये कविता भाई नरेंद्र मिश्र प्रस्तुत कर रहे थे, और अब समय का तकाजा है कि इस मंच पर भाई माणिक वर्मा आए। माणिक वर्मा हास्य और व्यंग्य के महान शिल्पी हैं। मैं भाई माणिक वर्मा से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं।
रचना का शीर्षक है बलात्कारियों की आपातकालीन बैठक। रचना देखिए, देखिए मैंने नए नए एंगल्स इसमें उठाए हैं, नए नए ढंग से बात कहने का प्रयास किया है। इस बात को देखिए, बलात्कारियों की आपातकालीन बैठक, समय रात के 12 बजे, स्थान बलात्कारियों का पार्टी दफ्तर, आसपास सदस्य, बीच में अध्यक्ष। अध्यक्ष की आवाज गूंजती है, बलात्कारियों का अध्यक्ष कह रहा है कि मेरे देश के जवां मर्दों, समाज के लाइलाज सरदर्दों, समस्या गंभीर है। महिलाओं पर अत्याचार देखकर सारा देश अधीर है। कोने कोने से आवाज आ रही है, बलात्कारियों को फांसी दो, गोलियों से उड़ा दो, जमीन में जिंदा गड़ा दो, हाथ पांव तोड़ दो, कमीनों पे पागल कुत्ते छोड़ दो, सांपों को मत पालो, मिल जाए तो कुचल डालो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों सुन रहे हैं, क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप लोग, मेरा मुंह क्या तक रहे हैं, कुछ कीजिए ना। एक बलात्कारी बोला माफ कीजिए ना, इन गीदड़ भपकियों से क्या डरें, अरे कानून हमारे साथ है, इनकी परवाह क्या करें। कानून हमारे साथ है, इनकी परवाह क्या करें, हमने क्रांति का बिगुल बजाया है, सांस्कृतिक आंदोलन चलाया है, सांस्कृतिक आंदोलन चलाया है। अरे सदियां हो गई, अब तो सुधरना चाहिए, महिलाओं को अपनी रक्षा आप करना चाहिए। अब वो झांसी वाली नहीं बने तो हम क्या करें, द्रौपदी की मौत मरना है तो मरें, हमको क्या फर्क पड़ता है, क्रांतिकारी हमेशा आगे बढ़ता है। बच निकले तो इनकलाब लाएंगे, और पकड़े गए तो शेख शहीद कहलाएंगे। एक कुंवारा सदस्य बोला भाइयों शादी भी तो सर्टिफाइड व्यभिचार है, इसी का उजला पक्ष बलात्कार है। शादी भी तो सर्टिफाइड व्यभिचार है, इसी का उजला पक्ष बलात्कार है। पति पत्नी को अर्धांगनी का रूप देकर, समाज से शादी का लाइसेंस लेकर, जीवन भर गुलछर्रे उड़ाता रहे, हमारे चरित्र को अंगूठा दिखाता रहे, हम बुद्धुओं की तरह ताकते रहे, इधर उधर झांकते रहे, यह अहिंसावादी अन्याय नहीं है, यह अहिंसावादी अन्याय नहीं है। वो तो ये कहो, भारतीय महिला महान है, हर गले पड़े को निभाती है, वरना कौन मूर्ख पत्नी अपने पति को चाहती है।
हाय हाय, वाह वाह वाह,
वो तो भारतीय महिला महान है, हर गले पड़े को निभाती है, वरना कौन मूर्ख पत्नी अपने पति को चाहती है। और भैया ये शरीफ लोग कौन से दूध के धुले हैं, ये सभ्य लोग कौन से दूध के धुले हैं, जब जब भी इनके कारनामे खुले हैं, हमारी आंखें शर्म से झुक गई हैं, इंसानियत की नब्जें रुक गई हैं, जिसकी मिसाल नहीं मिलती, कोई कली इनके छुए बिना नहीं खिलती, कोई कली इनके छुए बिना नहीं खिलती, यदि खिले और इनको नहीं मिले, कोई कली इनके छुए बिना नहीं खिलती, यदि खिले और इनको नहीं मिले तो पूरा पेड़ उखाड़ देंगे, बाग का बाग उजाड़ देंगे। हमारा तर्क है इनमें और हम में क्या फर्क है, हम शारीरिक, ये मानसिक बलात्कार करते हैं, ये थ्योरियां पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं।
हम प्रैक्टिकल करते हैं।
अरे हमें तो परोपकार से रोक रहे हैं, और खुद 65 करोड़ लोग मिलकर बेचारी एक गरीबी को भोग रहे हैं, और खुद 65 करोड़ लोग मिलकर बेचारी एक गरीबी को भोग रहे हैं, ये सामूहिक बलात्कार नहीं है। और ये 65 करोड़ लोग मिलकर 65 करोड़ लोग मिलकर बेचारी एक गरीबी को भोग रहे हैं। ये सामूहिक बलात्कार नहीं है, कानून को इसकी सजा देने का अधिकार नहीं है। यदि समाज कानून और व्यवस्था के हाथ बौने हैं, ये सब चांदी की चाबी से चलने वाले खिलौने हैं, तो कांच के इन बेजान खिलौनों को एक एक करके तोड़ेंगे और हर नारी को पत्थर की अहल्या बना के छोड़ेंगे। एक सदस्य बोला, बलात्कारी होके कविता कर रहे हो, इसीलिए भूखे मर रहे हो। अरे चरित्र के कीर्ति मानो, चरित्र के कीर्ति मानो, सेक्स के विद्वानों, जरा हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, हमारा तर्क भी सुन लीजिए। वेश्या क्या समाज की नारी नहीं है? किसी आंगन की फुलवारी नहीं है? फिर क्यों सामाजिक प्रॉपर्टी कहलाए? जिसका जी चाहे सिक्के फेंके, मछले कुचले और चला जाए। समाज समाज बीनों की तरह देखता रहे, नैतिकता के झूठे सिक्के फेंकता रहे, वो फंसती रहे, भीतर रोए बाहर हंसती रहे। शरीर बेचना उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं है, यदि है तो इसे भी बलात्कार की संज्ञा दी जाए और सारे समाज की खटिया खड़ी की जाए। यदि है तो इसे भी बलात्कार की संज्ञा दी जाए, सारे समाज की खटिया खड़ी की जाए। एक बोला, कहां का आदर्श सूझ दिया यार, कहां वेश्याव्रति और कहां बलात्कार, दोनों को एक ही कैटेगरी में रख रहे हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पानी पी लो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पानी पी लो, इन्हीं झूठे आदर्शों के सहारे जी लो, इन्हीं झूठे आदर्शों के सहारे जी लो। अरे सारा आसमान फटा है, कहां कहां थेगले लगाओगे, मुश्किल से एक मिली है उससे भी जाओगे, मुश्किल से एक मिली है उससे भी जाओगे। बलात्कारी बोला, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, पहले बात को समझ लीजिए, यदि नारी सामाजिक प्रॉपर्टी है तो हम भी सामाजिक प्राणी है, हमको भी अथॉरिटी है, अपनी कलाकारी दिखाएं, इज्जत लूटे और फूट जाएं। क्यों भाई, ठीक है ना? बोले हाँ अब ठीक है, तो फिर देर किस बात की है साथियों, आओ इनकलाब लाएंगे, अपना हक मांग कर नहीं छीन कर खाएंगे। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे। वो दो पंक्ति जिसके लिए पूरी रचना लिखी, पंक्ति देखिए, क्रांति अमर रहे। उससे पहले के कोई कुछ कहे, अध्यक्ष स्वयं उठकर बोले, बंधु मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, अपनी आत्मा का हनन करता हूं, आपसे एक नई दिशा पा रहा हूं, आप यहीं बैठे रहिए, मैं आपके घर जा रहा हूं। अरे बंधु मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, अपनी आत्मा का हनन करता हूँ, आपसे एक नई दिशा पा रहा हूँ, आप यहीं बैठे रहिए, मैं आपके घर जा रहा हूँ। मार पीट के साथ नाटक समाप्त हुआ, मार पीट के साथ नाटक समाप्त हुआ। समाज कानून और व्यवस्था का चेहरा जर्द हो गया, यार हमारा खून इतना सर्द हो गया, हमारा खून इतना सर्द हो गया कि अब रिश्तों के लिबास भी नारी की असमत नहीं बचाते। अब रिश्तों के लिबास भी नारी की असमत नहीं बचाते, कोई नीति ग्रंथ काम नहीं आते जो इस गलत परंपरा को तोड़े। दोष हमारा है, हम ही सभ्यता की दौड़ में ऐसे दौड़े कि अब आदमी कहलाने को तरस गए हैं। फर्क बस इतना है, पहले आदमी जंगलों में रहता था, अब आदमियों में जंगल बस गए हैं। आदमी
बलात्कारियों की आपातकालीन बैठक। दोस्तों, भाई माणिक वर्मा की इस सारगर्भित रचना के साथ ही आज का ये कवि सम्मेलन समाप्त हो रहा है। आज आपने जिन कवियों को सुना उनके नाम हैं सुरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश आदित्य, नूतन कपूर, अशोक चक्रधर, शैल चतुर्वेदी, नरेंद्र मिश्र और माणिक वर्मा। और अब राजेश जौहरी को आज्ञा दीजिए।